ऋषिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंत देव देवरल्लि नन्न तलियो बागिदे अंत देव देवरल्लि ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ पेज नंबर 58 भूमि विशेष स्थिर भोग भूमि संख्या ये हो गया था ना अस्थिर भोग भूमि संख्या नीचे का पैराग्राफ पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्रों में विद्यमान जो 10 आर्यखंड हैं उनमें खेचर क्षेत्रों को छोड़कर शेष जो 10 भूचर क्षेत्र हैं वे ही उत्सर्पिनी के चौथे पांचवे छठे काल में तथा अवसर्पिनी के पहले दूसरे तीसरे काल में अस्थिर भोग भूमि कहलाती हैं। शेष काल में अस्थिर कर्म भूमियां कहलाती हैं। पांच भरत पांच ऐरावत क्योंकि इसमें काल के 6 खंडों का परिवर्तन है, इसलिए भोग भूमि का आना जाना लगा रहता है। पहला काल आ गया तो भोग भूमि स्टार्ट, अवसर्पिनी के प्रथम काल में भोग भूमि स्टार्ट होती है, अवसर्पिनी के तृतीय काल समाप्त होने पर क्रमशः उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, तीनों भोग भूमियां समाप्त होती हैं। फिर कर्म भूमि स्टार्ट होती चौथे काल में, पंचम काल में, छठे काल में और उत्सर्पिनी के पहले काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में। ये 6 काल कर्म भूमि के हैं, चौथे पांचवे छठे पहले दूसरे तीसरे, ये जो 6 काल हैं ये कर्म भूमि के काल हैं नीचे के, और ऊपर के जो 6 काल बनते हैं चौथा पांचवा छठा और पहला दूसरा तीसरा, ये भोग भूमि के काल बनते हैं। भोग भूमि 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर्यंत होती है और कर्म भूमि 2 कोटा कोटी सागर की होती है। एक कल्प काल 18 प्लस दो कोड़ा कोड़ी, एक कल्प काल, यह एक काल चक्र माना जाता है। काल चक्र यानी चक्र बनता है दो से, अवसर्पिणी से और उत्सर्पिणी से। एक चक्र पूर्ण होने के लिए एक कल्प काल कहते हैं, एक बार घूम गया चक्र तो एक कल्प काल हो गया। ये कितने सागरोपम का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उसमें अधिक से अधिक यह जो हम बैठे हैं, ये भूमि भोग भूमि के रूप में ही अधिक से अधिक होती है। कितना पट? 9 पट। तो देखो 9 पट में ये 2 पट कहाँ? कर्म भूमि बहुत कम समय के लिए आती है और उसमें भी चौथा काल बहुत कम समय के लिए आता है। उसमें चौथे काल में भी तीर्थंकर कभी कभी आते हैं, बीच में बहुत गैप पड़ता है। और तीर्थंकर आने के बाद भी उनके सानिध्य में भव्य जीव कभी कभी आते हैं। वो सबसे ज्यादा महंगे हैं, दुर्लभ हैं। समो शरण में प्रवेश हमारा अपने शुभ कर्म के उदय से होता है। दिव्य ध्वनि सुनना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत दुर्लभता की बात है, बहुत दुर्लभ है। भवि भागन वश जोगे वशा, इसलिए लिखना पड़ा। भव्य जीवों को अपने पुण्य कर्म के उदय से दिव्य ध्वनि खिरती है और साक्षात तीर्थंकर का उपदेश वो सुनते हैं। साक्षात तीर्थंकर का, और उस समय जो साक्षात तीर्थंकर का उपदेश सुनते होंगे वो कितने बड़े भाग्यशाली। और वे तीर्थंकर मोक्ष चले गए और दूसरे तीर्थंकर उत्पन्न होना है तो उसमें बीच में कितना गैप पड़ जाता है, फिर उनका भाग्य कहाँ गया? चतुर्थ काल तो चल रहा है, तीर्थंकर का उपदेश नहीं मिलेगा। अब केवली की परंपरा निरंतर बनी रहती है, मनपरे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, द्वादशांग श्रुत केवली, सामान्य मुनि सभी निरंतर रहते हैं, परंतु तीर्थंकर मिलने वाले नहीं है। चतुर्थ काल होकर के भी तीर्थंकर नहीं मिलते। विजयार्ध पर्वतों में तो तीर्थंकर उत्पन्न ही नहीं होते, यहां उत्पन्न होते। विजयार्ध पर्वतों में सामान्य केवली ही होते, यहां तीर्थंकर भी होते हैं, सामान्य केवली भी होते हैं, श्रुत केवली भी होते हैं, मनपरे ज्ञानी भी होते हैं। यहाँ पर जन्म लेने वाले जीवों का बड़ा भाग्य होता है। विजयार्ध पर्वत के विद्याधरों को भी यहीं आना पड़ता है तीर्थंकरों का उपदेश सुनने के लिए। यहाँ कहाँ? आर्यखंड में यहीं आना पड़ता है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है तीर्थंकरों का सानिध्य पाना। 3 लोक में सबसे बड़े पुण्यवान व्यक्तित्व है वो, बड़ा पुण्यवान व्यक्तित्व तीर्थंकर प्रकृति। उसको हम बांध सकते हैं, प्रत्येक के पास वह योग्यता है, पर उस योग्यता को प्रकट करने में थोड़ा श्रम लग सकता है, परंतु हो सकता है। उसके संस्कार डालते 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 हम यदि बहुत प्रयत्न करेंगे तो तीर्थंकर भी बनना संभव है। बीस सीट तो फुल हैं, बाकी खाली हैं। वो भी रिजर्वेशन किए होंगे, खाली कभी रहते नहीं, वो रिजर्व रहते हैं, रिजर्व। पहले से ही फिक्स होता है। वो सीट नहीं भी मिले तो भावी काल में कितने होने वाले हैं? अनंत। उसमें से तो नंबर लगा। निराश नहीं होना, अनंत काल तक होने वाले हैं ये भरोसा है कि नहीं? उसमें कहीं ना कहीं नंबर लगेगा। ऐसे संस्कार डालते 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 हम वहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। पर तीर्थंकर बनो या नहीं बनो, कम से कम अरहंत बनो। अरहंत बनो या नहीं बनो, कम से कम मुनि बनो। और मुनि भी बनो या नहीं बनो, कम से कम देशव्रती बनो, प्रतिमाधारी बनो। प्रतिमाधारी भी बनो या न बनो, कम से कम सम्यक दृष्टि तो बनो। ये भी नहीं बन पाओगे तो किस काम का? जीवन चला गया। धर्म का सूर्योदय हुए बिना अगर जीवन चला गया तो अंधकारमय था, अंधकारमय ही रहा और अंधकारमय ही भविष्य रहेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए श्रावक को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई विकल्प नहीं लाना मन में। सम्यक दर्शन रूपी धर्म ही शरण जाने के योग्य है, वही मंगल है। कल बताया था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में है। दो गुण तो है, और ऐसे दोनों रत्नों को धारण करने वाले तीर्थंकर के पास संयम नहीं है। एक संयम के अभाव के कारण ये तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार मत करो। जय जिनेन्द्र बोलो। कौन कहते हैं? तीर्थंकर ही कहते हैं कि मुझे नमस्कार मत करो, मैं अभी तीर्थंकर नहीं हूं और न ही नमस्कार के लायक हूं, क्योंकि साक्षात तुम देख रहे हैं मेरे शरीर पर वस्त्र हैं। ये वस्त्र परिग्रह है, परिग्रह पाप है। जब तक मेरा जीवन पापमय रहेगा तब तक नमस्तु नहीं करना। ये वस्त्र जब उतार करके मैं दिगंबर मुनि बनूंगा तभी पूज कहलाऊंगा, तब नमस्कार करना शुरू करना। ये जैन धर्म है। जैन धर्म में दिगंबर मूर्तियां ही पूजी जाती है। क्या वस्त्रधारी? वस्त्रधारी कोई भी हो उसकी पूजा जैन धर्म में नहीं है। तीन बातें नहीं है। कल कहा था सुबह, क्या क्या नहीं है? नमोस्तु नहीं, अष्टक नहीं और आरती नहीं। वस्त्रधारी जीवों को इतना ही नहीं, और एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि वस्त्र रहित भी जीव ये तीन के लायक नहीं, आरती अष्टक और नमोस्तु। वस्त्र रहित भी कौन? कल दोपहर को आप लोग आए नहीं थे, बहुत डिटेल चर्चा हो गई थी, बहुत बढ़िया चर्चा हो गई थी। कल का सुन लेना अगर रिकॉर्ड किया है तो। बहुत बढ़िया चर्चा हो गई थी, हुई थी कल। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों रत्न है कि नहीं? है। और 1008 गुण भी साथ में है भगवान के। ये जन्म के हैं, जन्म के हैं लेकिन शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। ये जन्म के हैं, शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। और 1008 गुण होने के बाद भी और सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी तीर्थंकर भगवान कहते हैं मुझे नमोस्तु नहीं बोलना, मेरी पूजा नहीं करना, अष्टक नहीं करना। आप तीर्थंकर की पूजा ही निषेध है, वस्त्र सहित अवस्था में, फिर और किसकी करोगे आप? तीर्थंकर के, तीर्थंकर से बढ़कर के कोई है? और ऐसे वस्त्रधारी तीर्थंकरों की सेवा के लिए कौन आए? जन्मे जब आए, गर्भ में आए जब आए, तीर्थंकर की नहीं, तीर्थंकर की माता की भी उन्होंने सेवा की। कौन आए? हाँ, देवी आए, 56 कुमार देवियां बोलते हैं ना, अष्टकुमारी का देवी आई, माता की सेवा किया। तो किसकी सेवा कर रहे हैं? माता की। माता की भी तो सेवा हो रही है, और तीर्थंकर के कारण से आए हैं, लेकिन सेवा किसकी हो रही? वहां माता की हो रही है। और उसके बाद तीर्थंकर जब जन्मे, तब भी तो इंद्र देवता ने अपने देव परिवार के साथ ले जाकर जन्माभिषेक किया। ये किसकी सेवा है? तीर्थंकर बालक की। पर ये सभी देव सेवा में लगे हैं, किसी ने नमोस्तु बोला, किसी ने अष्टक किया। अभी अभी समझ में आ रहा है, ये असयम है। असंजदम न वंदे, असयमी जीव संसार में किसी भी गति के हों, वंदनी नहीं होते। इतनी बात अगर जैन धर्म की पकड़ में आ गई तो आप जैनी बनने के लिए दरवाजा खोल देते। इस ज्ञान के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? रागी जीव वंदनी नहीं होते ये समझना, और संयमी जीव ही वंदनी होते हैं ये समझ में आना सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन है। कल बताया था 1008 गुण पूजनी नहीं होते, अष्टक के योग्य नहीं है वो, वंदन के योग्य ही नहीं है तो अष्टक के योग्य कैसे, फिर आरती के योग्य कैसे? वंदना ही जिनकी नहीं कर सकते, उनकी आरती और अष्टक कैसे हो सकता है? तो वो 1008 कब वंदनीय बनते हैं? वो भी उपचार से, सीधा नहीं, उपचार से। कब वंदनीय बनते हैं? हाँ, जब तब कल्याणक हो जाए, दीक्षा ले तीर्थंकर भगवान, तब जो है वो 1008 संयम के कारण से वंदनीय हो गए। हाँ, उसमें उनको स्मरण करके हम संयम गुण की पूजा करते हैं, उनकी नहीं, उनका नाम लेते हैं। जैसे जन्म कल्याणक में कहते हैं ना, पंच कल्याणक सहिताय तीर्थंकर देवाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पांचों कल्याणक से जो सहित हैं, उन तीर्थंकर भगवान को हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अष्टक कर रहे हैं या आरती उतार रहे हैं। तो किसकी हो रही है यहाँ आरती? संयम की हो रही है ना, संयम की हो रही है। क्या पांच कल्याणक सहिता ये कहने से जन्म कल्याणक की आरती हो रही है? ऐसे तीर्थंकर पूजनी हैं जो जन्म कल्याणक से भी युक्त हों, किंतु जन्म कल्याणक से युक्त उस तीर्थंकर में से हम तप कल्याणक वाले तीर्थंकर की ही पूजा करते हैं, क्योंकि जन्म कल्याण के काल में उनका चौथा गुण स्थान था, वो वंदनीय अवस्था नहीं थी। ठीक है ना, वंदनीय अवस्था नहीं थी, चौथा गुणस्थान था। अब वही जन्म कल्याणक तप कल्याणक होने के बाद भी उसी आत्मा का जन्म कल्याणक भूतकाल में हुआ है, ये उनके साथ लगा हुआ है, वो भूत पर्याय है। और वह भूत पर्याय भविष्यत पर्याय में जब ढल गई तो तो संयम पर्याय की उत्पत्ति हो गई। संयम पर्याय की पूजा करते समय हम क्या कहते हैं, जन्म कल्याणक सहिताय तपधारी संयम धारी तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्भ, यानी ऐसे तपधारी जिनका तप कल्याणक होने से पूर्व जन्म कल्याणक भी हुआ है, ऐसे तपस्वी की हम पूजा करते हैं। जैन धर्म तपस्वियों की पूजा करने के लिए उपदेश देता है। तपस्वी तप यानि संयमी चारित्रवान, जब तक जीवन में से पंच पाप नहीं हटते तब तक वंदनी पूजनी अर्चनी नहीं है। पंच पाप दूर होने पर ही हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये पंच पाप दूर होते ही वंदनीयता आ जाती है। तो कल ये बता रहे थे हम, बहुत एक बढ़िया बात सुन लो, 1008 गुण तो शरीर के हैं, वो तो वंदनीय नहीं है, किंतु उसी शरीरधारी भगवान की पूजा हमने चारित्र उनके जीवन में आने के बाद शुरू कर दिया। ये तो शरीर भौतिक पार्थिव शरीर है, भौतिक है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, वो परमाणु भले ही शुभ हो और शरीर में जो लक्षण होते हैं वे उनके शुभ नाम कर्म के उदय के कारण भले ही शुभ हो, परमाणु सुगंधित हो, होते ही सुगंधित, और शरीर की सुंदरता भी है, सुडोल सुंदर शरीर है, और शरीर में मजबूती भी है, वज्रशव नाराज सनन है, और ऐसे शरीर में शुभ शरीर में आत्मा है, उस शुभ शरीर में आत्मा होने से उनके बोली में कोई गलती नहीं होती, शुभ शरीर सहयोग देता है, बोली में गलती नहीं होती, हित मित मिष्ट प्रिय वचन बोलते हैं, हित मित मिष्ट प्रिय वचन तीर्थंकर बोलते हैं। तो देखो शरीर में 1008 गुण तो जन्म के साथ ही आ गए, 1008 गुणों की हम वंदना पूजा वगैरह कुछ नहीं करते, न ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां आत्मा के गुण ही पूजे नहीं जा सकते, मेन इंपॉर्टेंट बात कही जा रही, जहां आत्मा के दो गुण ही नहीं पूजे जा रहे हैं, कौन कौन से? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, किस कारण से? संयम न होने के कारण से। जहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही नहीं पूजे जा रहे हैं, वहां जड़ के लक्षण कैसे पूजे जा सकते हैं? मेन बात नोट करके रखो, जहां आत्मा के साक्षात गुण हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है तीर्थंकर के पास। ज्ञान तीन ज्ञान हैं, सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान हैं, आत्मा के हैं, परमार्थ कहलाते हैं, फिर भी नहीं पूजे जा रहे हैं। तीर्थंकर भगवान कहते हैं मेरे अवधि ज्ञान को मत पूजना, अभी नहीं, बाद में बता दूंगा कब पूजना, अभी तो मैं नीचे के गुण स्थान में हूं, मेरे पास अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये आत्मा के हैं, परमार्थ हैं, परमार्थ रूप हैं, लेकिन अभी नहीं पूजना। क्यों भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो, आत्मा के गुण हैं, मैं हम तो पूजेंगे? नहीं, ये आत्मा के गुण तो हैं, लेकिन इनमें पूजता आने के लिए अभी मैं संयम धारण नहीं किया हूं, यानी मेरे पास मेरे जीवन में भी पंच पाप हैं। जब तक मैं बाह्य परिग्रह से मुक्त होकर दिगंबर नहीं बनूंगा तब तक इन दोनों गुणों को भी नहीं पूजना, आत्मा के गुणों को भी नहीं पूजना और 1008 शरीर के लक्षण रूप गुणों को भी नहीं पूजना। कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती। ये हाईएस्ट अंतिम शिखर की बात हो गई। अब कर लो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इस बात से चिंतन करके सम्यक दर्शन क्या समझने से प्राप्त होता है, क्या पूजने से होता है, क्या श्रद्धा करने से होता है, क्या मान्यता बनाने से होता है, समझना तो पड़ेगा ना। क्या समझने के लिए भी घबराहट होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन धारण करो या ना करो, लेकिन समझ करके तो रखो कम से कम। अपनी थैली बाजार में गए ही हैं तो अपनी थैली में खाओ या नहीं खाओ, खाने की चीज तो खरीद करके लाओ, घर में तो रखो, कभी खाने के लिए आएगा आगे। ज्ञानी बनो पहले। जैन तत्व तो वैसे ही सूक्ष्म बारीक हैं, चिंतन में तो आते नहीं। छद्मस्थ प्राणी को चिंतन में आसानी से नहीं आ पाते, और नहीं आ पाते इसलिए धर्म के संबंध में जो कुछ भी वह विचार करता है, वह विचार अपनी तरफ से करके अपनी तरफ से निर्णय लेता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूं यही धर्म है, और वो उल्टा हो जाता है। अपना निर्णय है वो। जिनेंद्र भरण भगवान का निर्णय सुनो तो, भगवान कहते हैं मुझको मत पूजना, अभी परमार्थ के दो गुण मेरे पास हैं और 1008 गुण भी शरीर के हैं, आकर्षित मत होना, पूजा के लिए जल्दबाजी नहीं करना, मैं बता देता हूं तब पूजा करना। तीन क्रियाएं नहीं हो सकती तीर्थंकर के लिए उस समय जब चतुर्थ गुण स्थान में हो। कौन कौन सी? आरती, अष्टक और पूजा, ये तीन नहीं हो सकते। नमोस्तु, नमोस्तु, अष्टक, आरती, तीन नहीं हो सकते। तो देखो आत्मा के जो गुण दो है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ज्ञान में तीन ज्ञान है, हमसे भी एक ज्यादा है, तीन ज्ञान है। ये ज्ञान पवित्र नहीं कहलाते। परमार्थ जरूर है किंतु पवित्र नहीं है, मंगल नहीं है, मंगल की कोटि में ये दोनों नहीं है। अभी मंगल चार ही होते हैं, चत्तारी मंगल, अरिहंता मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल, असयमी जीव मंगल, कहीं कहा है साहु मंगल, साहु यानि साधु, संयमी, संयमी संयम के कारण से मंगल, असयमी असयमी के असयम के कारण से अमंगल। साधु को मंगल कहेंगे क्या श्रावक को? साधु मंगल में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आप लोगों के पास भी है और वह पवित्र है, परमार्थ है, ऐसा कह सकते हैं। परमार्थ है लेकिन पवित्र नहीं, क्योंकि जीवन में जब तक पंच पाप होते हैं तब तक दर्शन ज्ञान भी अपवित्र ही कहलाते हैं, क्योंकि वे अशुभाश्रव के कारण बन रहे हैं। अभी अशुभाश्रव विद्यमान है, पंच पापों में प्रवृत्ति करते समय जीव को अशुभाश्रव नियम से होता ही है, और वे दर्शन ज्ञान दोनों परमार्थ इसलिए हैं कि उनके माध्यम से 41 कर्मों का संवर हो चुका है, इसलिए वो परमार्थ हैं। परमार्थ है। परमार्थ किसको कहते हैं? परम अर्थ की ओर जो ले जा सकता है वो परमार्थ। परम अर्थ क्या है? मोक्ष को परम अर्थ कहते हैं, वही परमार्थ है। सम्यक दर्शन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है कि नहीं? सम्यक दर्शन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रथम गुणस्थान से उठाकर हमें सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में बिठा रहा है, बिठा चुका है। तो वहां से उठाकर यहां बिठाने से कितने पापों से हमको उन्होंने बचाया, तो 41 पाप कर्मों के आश्रय से उसने बचा लिया। इस अपेक्षा से तो कम से कम मंगल कहना ही चाहिए था, और कह करके चत्तारी मंगलम में एक पद और जोड़ना चाहिए था। साहू मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल और सम्यक दृष्टि सावय मंगल, सावय धम्म मंगल, श्रावक धर्म मंगल, ऐसा कहीं कहा नहीं कहा। और इतनी भीड़ लगी तो ना वंदना कब करोगे, पूजा किस किस की करोगे, पूजा खत्म ही नहीं होगी, सभी पूजनी सभी वंदनी। बड़ी सूक्ष्मता से सम्यक दर्शन रूपी धर्म के संबंध में विचार करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए, उसमें ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, उसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। तात्विक दृष्टि से विचार करो, तीर्थंकरों की भगवंतों की जो वाणी है उसके आधार से सम्यक्तों का विचार करो, चिंतन करो। तो ऐसा चिंतन करो, यही चिंतन करो कि तीर्थंकरों की अष्टक आरती पूजा वगैरह क्यों नहीं होती, उनको नमस्तु क्यों नहीं बोल सकते, ये विचार करो तो बेड़ा पार हो जाओगे, सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, आयतनों की पहचान सही सही हो जाएगी। अब देखो सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उस समय में भी वही सम्यक दर्शन होता है, उस समय में तो उस सम्यक्तु को और उस ज्ञान को नमोस्तु नमोस्तु कह रहे हैं अपन। तब भी क्षायिक था, 41 कर्मों का ही संवर कर रहा था, अब भी क्षायिक है, 41 ही कर्मों का संवर कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं। परंतु इस छठे गुण स्थान में वही सम्यक दर्शन यहाँ आने पर उसमें पवित्रता क्यों आई, किधर से आई, किस कारण से आई, संयम धारण करने से आ गई। संयम ने कितने कर्मों का संवर करा दिया, हाँ, संयम न होने के वजह से असंयम के कारण कितने प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था, नहीं, सम्यक तो न होने से 41 का आश्रय हो रहा था, वो तो रुक गए, चौथे में ही रुके हुए थे। असंयम चारित्र का घातक है, असंयम चारित्र का घातक, असंयम असंयमी जब तक थे तीर्थंकर तब तक कितने कर्मों का आश्रय और बंद करार कर रहे थे। तो देखो देखो कितने, हम बताते हैं, लिख के रखना, नोट करके रखना, ताकि उनका क्षायिक सम्यक्तु वंदनी कब बना, कैसे बना, पवित्र कब हुआ, अपवित्र कब तक रहा, ये भी पता चलेगा। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, उसके उदय में 10 प्रकृतियों का बंध होता है, असंयम के कारण कितने प्रकृतियों का बंध होता है, 10 प्रकृतियों का, इनका संवर यहां नहीं हुआ है 10 का। पांचवें गुणस्थान में 4 प्रकृतियों का बंध होता है, अप्रत्याख्यानावरणी, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कर्म हैं, ये 10 और वो 4 कितने, 14। संयम धारण करते ही इन 14 का संवर हो जाता है, छठे गुण स्थान में आ जाता है जीव। 14 का संवर करेंगे तो छठे गुण स्थान में आएंगे। अब छठे गुण स्थान में आते ही पवित्रता आ जाती है, तो अपवित्रता के लिए कारण कितनी प्रकृतियां बन रही थी? 14। 14 का उदय जब तक रहेगा, क्षायक सम्यक दर्शन भी पूजनी नहीं है। ये सिद्धांत है, ये जैन धर्म का भीतरी सिद्धांत है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अंदर की बात पकड़ में आ गई तो बाहर की अपने आप पकड़ में आती है। सिद्धांत की बात पकड़ में आ गई तो बाहर की बात अपने आप पकड़ में आती है। छठवें गुण स्थान की विशेषता यही है ना, छठे में जाते ही 14 का आश्रव रुक जाता है, ये छठे की विशेषता। 14 के कारण से ही वह सम्यक दर्शन अमंगल की कोटि में आ रहा है, क्षायिक सम्यक दर्शन। पकड़ में आई बात? चौथे गुण स्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर हैं, वो वंदनी पूजनी नहीं है। क्यों नहीं है? ये 14 प्रकृतियां उनको भी आश्रव बंद को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए नहीं। ये 14 प्रकृति जब तक बंधते रहेंगे तब तक आत्मा अमंगल, क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा भी अमंगल। चौदह में महा कौन से 8 कषाय? प्रत्याख्यान वाली महत्वपूर्ण वही है, क्योंकि इनके उदय में जीव बाह्य परिग्रह की ओर आकर्षित होता है, स्वामित्व बुद्धि आ जाती है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कर्म के उदय से स्वामित्व बुद्धि आएगी क्या? स्वामित्व बुद्धि के बिना भी जी सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर पंचम गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में हैं, तो बाह्य परिग्रह का स्वामित्व वहां रहेगा ही। यह पर वस्तु मेरी है और मैं इसका हूं, इस प्रकार बंधन रहता है, गठबंधन परस्पर में। ये मेरे बंधन में है और मैं इसके बंधन में हूं। हाँ, मेरे बिना इसका नहीं चलता और इसका मेरे बिना नहीं चलता। आज सुबह प्रवचन सार में भाव श्रमण की व्याख्या पढ़ रहे थे, परिभाषा डेफिनेशन उसमें बताया है। भाव श्रमण का लक्षण क्या है? तो उन्होंने बताया, मैं इनका स्वामी हूं, जड़ और चेतन पर वस्तु जो है ना, मैं इनका स्वामी हूं और ये मेरी वस्तु हैं। इस प्रकार के विकल्प कौन से गुण स्थान तक होते हैं? 5वें गुण स्थान तक। जब तक बाह्य परिग्रह को वह ये मेरा नहीं है कहकर त्याग नहीं करता, तब तक होते हैं। इंद्रिय विजय क्या चीज है, इसको बताया उसमें। जब तक यह आत्मा पर वस्तु के अधीन रहता है, अपने चित्त को अपने मन को पर वस्तु के अधीनता में देता है, स्वतंत्र नहीं रखता, अपने चित्त को स्वतंत्र नहीं रखता, पर वस्तु के अधीनता में देता है, तब तक यह इंद्री विजयी नहीं है। बाह्य चेतन और अचेतन पदार्थ हमें परतंत्र बनाते हैं, अपन अपने मन को परतंत्र बनाते हैं। और किस कारण से परतंत्र बनाते हैं? इच्छा के कारण से। और यह इच्छा किस कषाय संबंधी इच्छा? तो अप्रत्याख्यानावरणीय और प्रत्याख्यानावरणी, इस कषाय संबंधी इच्छा हमें परतंत्र बनाते हैं। और इन दोनों गुणस्थान में रहने वाले जीव इंद्रिय विजयी नहीं कहलाते, क्योंकि चित्त को पर में दिया है, इसलिए परतंत्र हैं। चित्त को पर के लिए बेच दिया है, अपने हाथ में नहीं है। घर आपका है लेकिन किराए पर दिया है, और जब तक किराए पर दिया है तो आपके आपका होते हुए भी आपका नहीं है। हाँ, ये स्थिति है। जब तक स्वामित्व बुद्धि है, आत्मा आपकी, सम्यक दर्शन आपका, आत्मा स्वतंत्र कहने के लिए स्वतंत्र, लेकिन आत्मा ने अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को किराए पर दिया है। ये मेरी वस्तु है, इस प्रकार की बुद्धि के साथ साथ क्या किया है? अपने चित्त को पराधीन करके रख दिया। देखो श्रमण कैसे रहते हैं। श्रमण कभी विहार कर रहे हैं तो कुछ किसी को कह करके विहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने किराए पर मन को नहीं दिया है, तो हमारा मन हमारे वश में है, हमने किसी को बेचा नहीं इसको, तो हम किससे पूछें? किसी के बंधन में हो अपना मन तो वहां जाकर के पूछना पड़ता है कि हम जाना चाहते हैं। क्यों? आपको जाने का मन है तब भी क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आपसे बंधा हुआ है ना मेरा मन, मैं जाऊं और आपका हार्ट अटैक हो जाए, मैं जाऊं और मेरे लिए कोई समस्या खड़ी हो जाए आगे, तो हमारी समस्या के लिए आप एक उपाय हैं, साधन हैं, उस समस्या को आप हल कर सकते हैं। नहीं, दिगंबर मुनि ऐसे नहीं होते, अपनी समस्या को समस्या नहीं समझते, क्योंकि जो आगे जाकर के समस्या आने वाली है वो समस्या तब बन सकती है जब उसके वशी हम हों। दिगंबर मुनि पर के वशी नहीं होते, ये उनकी आवश्यक क्रिया है, किसी के अंडर में नहीं चलते, किसी के लिए अपने इंद्रिय को और मन को बेच नहीं देते, किराए पर नहीं रख करके चलते नहीं। और ये जब तक किराए पर रहेंगे पांच इंद्रिय और मन, तब तक मुनि को दिगंबर मुनि नहीं कहा, फिर तो वो नीचे हैं, उनकी आत्मा अभी मंगल की कोटि में नहीं है। सभी दस प्रकार के परिग्रहों को त्यागा है, बाह्य प्रकार जड़ और चेतन से दूर हो चुके हैं, लेकिन चित्त वहां से निकला नहीं, अटका हुआ है। तो चित्त यदि अटका हुआ है तो आत्मा अभी मंगल की कोटि में नहीं है। साहु मंगलम कह नहीं सकते, साधु परमेष्टी मंगल हैं। किस वजह से? चित्त की स्वतंत्रता के कारण से मंगल हैं, इंद्रियों की स्वतंत्रता के कारण से साधु मंगल हैं। ऐसी मंगल अवस्था आने के उपरांत आत्मा में बड़ा आनंद आता है, हर क्षण हल्का रहता है, और वह आनंद समीचीन ज्ञान के बिना आता नहीं है, अनेकांत ज्ञान के बिना आता नहीं है, गुणस्थान के ज्ञान के बिना आता नहीं है, दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुए बिना आता नहीं है, दर्शन ज्ञान के साथ संयम आए बिना आनंद आता नहीं है। क्या है साधु जीवन? साधु परमिष्टियों का गुण चिंतन भी कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उनके जो 28 मूल गुण होते हैं, वे 28 तो बाहर के होते हैं, लेकिन भीतर के 28 का आंखों से दिखते नहीं। आएगा साधु परमिष्टि का पाठ, आएगा जब हम चर्चा करेंगे, डीप जाएंगे, डीप जाएंगे, डीप में आनंद है। तालाब में डूबने में कोई आनंद नहीं, सागर की गहराई में डूबना बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सागर में ही मोती निकलते हैं, तालाब में कहां से मिलेंगे? ऊपर नहीं रहते मोती भी, मोती डीप में भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, किनारे पर भी रहते हैं। कोई सीप ऊपर आया हो पकड़ लेते हैं, मोती मिलता है उसमें। वही सीप तरंगों के टकराव से किनारे पर आकर के गिरा हो तो किनारे पर भी मिल सकता है। रत्न मोती जैसे नहीं, मोती की कीमत अधिक है या रत्न की? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये मोती के समान है, चतुर्थ गुण स्थान। ये मोती के समान है, लेकिन चारित्र तो रत्न है, सागर में डुबकी लगाए बिना नहीं मिलता। ये चर्चा ही मजेदार है, बड़ा आनंददायी है, क्योंकि ये चर्चा किसी पर की नहीं, ये स्वतः आत्मा की चर्चा है ना। ये बातें आत्मा को अच्छी क्यों लगती हैं? कारण ये है कि उसी की बात है, इसलिए। अगर दूसरी की बात होती तो ऊब जाता, क्या सुनना, उसी 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 की बात कर रहे हैं। मेरे संबंध में कुछ कहो, जो मैं हूं, जो भीतर आत्मा है, परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, उसके संबंध में कुछ कहने लगते हैं तो आनंद आने लगता है। और वही चर्चा मैं पर वस्तु, जड़ चेतन की वस्तुओं की चर्चा करने लग जाऊं तो ये आनंद आता नहीं है। और आपको आनंद इसलिए आ रहा है कि आप अपनी आत्मा को चाहते हैं, इसलिए आनंद आ रहा है। इस चर्चा से जुड़ रहे हैं आप, इसलिए आनंद आ रहा है। और कैसे जुड़ रहे हैं? अपनी आत्मा को बनाने के लिए इस चर्चा से जुड़ रहे हैं, इसलिए आनंद आ रहा है। जो आत्मा अपने को बनाना नहीं चाहता और केवल चर्चा से जुड़ना चाहता है, जुड़ भी जाए चर्चा से, आनंद आने वाला नहीं है। अपनी डोरी को चर्चा रूपी पतंग से जोड़ोगे और फिर उस पतंग को आकाश में उड़ा करके देखोगे तो मजा आएगा। मेरा पतंग बहुत आकाश में, इधर सबसे ऊंचा। डोरी को बांधना पड़ता है पतंग से, ये आत्म डोरी को कनेक्शन दे दो चर्चा से। आत्मा के लिए तत्व चर्चा करो तो आनंद आएगा, पर के लिए तत्व चर्चा करोगे तो आनंद आने वाला नहीं है। परोपदेश के लिए तत्व चर्चा करोगे आनंद नहीं आएगा। स्व आत्मा को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए तत्व चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा आनंद आएगा। डोरी को जोड़ो चर्चा से। कौन सी डोरी? आत्मा की डोरी को चर्चा के पतंग से जोड़ करके चर्चा करो तो बहुत आनंद आएगा। और आता है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी डोरी चर्चा से जुड़ गई है। डोरी छोड़ना भी नहीं, जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक इस डोरी को छोड़ना नहीं, डोरी को छोड़ना, लेकिन डोरी को नहीं छोड़ना। डोरी छोड़ोगे तो वो आकाश में जाएगा, खींच करके रखोगे तो कैसा हो जाएगा वो? डोरी को ढीले छोड़ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ते 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 आकाश में उड़ाना, बहुत दूर तक जाएगा। और जितना दूर जाएगा उतना ही आनंद आएगा। हाँ, पतंग जितना हम जितना डोरी छोड़ेंगे पतंग भी उतना ही आकाश में उड़ेगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही आनंद आएगा। बिल्कुल। तो बहुत आकाश में उड़ेगा ना, तब वहां संयम मिलेगा। वो संयम से जा करके आपका पतंग टकराया तो यहाँ पर अलग ही करंट आता है। जीवन में संयम धारण किए बिना मजा नहीं है। ये दर्शन और ये ज्ञान, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, क्योंकि 14 प्रकृतियों के कारण से अपवित्र हैं। ये कीचड़ वाला पानी है, इसको पी नहीं सकते। ये दोनों ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान राग पर्याय की अनुभूति कर रहे हैं। ये दोनों ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सराग अवस्था में है, भले ही क्षायिक हो, औपशमिक हो, क्षायोपशमिक हो, ये सराग अवस्था में है, चौथे में और पंचम में। छठे में चले जाए तो भी सराग है। इनका सरागपना चौथे से लेकर छठे सप्तम की प्रवृत्तियात्मक सप्तम गुणस्थान तक ये सराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक ज्ञान ही रहेंगे। चारित्र भी उसके साथ आया है, जुड़ गया है, तो भी वह सराग ही रहेगा। जब मुनि महाराज ध्यानस्थ हो जाएंगे सब प्रवृत्ति छूट जाती है, ये निश्चय संयम कहलाता है। गुप्ती में बैठ गए, ये निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अभेद परक हैं, अभेद परक, इसमें भेद भिन्नता नहीं। जब तक इन तीनों में भेद भिन्नता रहेगी तब तक इनको सराग कहेंगे, और जब अभेद हो जाता है तो तब इनको वीतराग कहेंगे, इनको वीतराग कहेंगे। ये वीतराग सम्यक दर्शन बहुत आनंददायी है। उसके आनंद को हम कैसे कह सकते हैं आपके पास? उस तो करके ही देखना पड़ेगा। शक्कर मैंने खा लिया और शक्कर की मिठासपन का कितना भी वर्णन कर लूं तो क्या आपको मिठास लग जाएगा एक क्षण? मेरे वर्णन मात्र से आपको शक्कर की अनुभूति नहीं होगी, नहीं हो सकती। हाँ, ये ठीक है ना, इसलिए तो चर्चा सुना रहा हूं, भाव बढ़ जाए और यहाँ पर अपना व्यापार हो जाए। हम इसलिए तो सुना रहे हैं, हमारी शक्कर की बात आपको बार बार हम क्यों कहते हैं? अपनी फैक्ट्री में तैयार हुआ यह शक्कर आपको उस चक्कर से बचाएगा जिस चक्कर में आप पड़े हैं, पंच पाप में अनादिकाल से पढ़ करके यह आत्मा दुखी हो रही है। वहां पर शक्कर की अनुभूति नहीं हो रही है, वहां पर जो कुछ भी खा रहे हैं खाए हुए वस्तु से हमें चक्कर ही आ रहा है। इस चक्कर को बचाने के लिए हम शक्कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एक चम्मच भी खा लोगे तो चक्कर आना बंद हो जाएगा, परम औषधि है। परम औषधि ऐसा शक्कर, ये संयम का शक्कर है। संयम के शक्कर का संयोग पाए बिना वह सम्यक दर्शन रूपी जल और वह सम्यक ज्ञान रूपी खटाई, खटाई ये दोनों किस काम के? संयम के शक्कर को घोले बिना वह शरबत बन नहीं सकता और शरबत बने बिना पीने का आनंद आ नहीं सकता, इसलिए तीनों को मिलाइए, सम्यक दर्शन को भी लाइए, सम्यक ज्ञान को भी लाइए और ये खड़ी शक्कर उसको पीस करके उसमें डाल करके हिला हिला करके, बादाम भी थोड़ा डालना हो तो डाल दो, हिला हिला करके गड़बड़ करके जितने बार ऐसा ऐसा करोगे उसमें उतना ही टेस्ट पड़ता है। फिर पी करके देख लो, एक घूंट में ही पता चलेगा, हाँ महाराज आप जो चर्चा करते थे अब मुझे आ गया वो सब। शक्कर इन्हें ऐसा होता है क्या? शब्दों से किसी बात को हम कितना भी वर्णन करते रहे, शब्दों से अनुभूतियां नहीं मिलती, आचरण से अनुभूतियां मिलती हैं। संयमाचरण आवश्यक है जीवन में। दर्शन और ज्ञान की वास्तविक अनुभूति, मंगलपने की अनुभूति अगर आप चाहते हैं तो उसमें संयम का शक्कर घोलना पड़ेगा। संयम उस खटाई को भी मारता है जो अमंगल है, संयम उस पानी के खारेपन को भी मार देता है जो अमंगल है, और पानी को भी पवित्र बनाता है, मिठास बना देता है, और खटाई को भी मिठास बना देता है, क्योंकि वो शक्कर है, वो शक्कर, उसके पास ये शक्ति है कि दोनों के अमंगलपन को दूर कर सकता है। पानी का खारापन वह अमंगल है और नींबू का खट्टापन अमंगल है, जब तक ये दोनों मिलके रहते हैं तब तक वो शरबत नहीं कहलाता। इसलिए जीवन में संयम भी आवश्यक है। संयम, ऐसा संयम आ जाए, इसलिए चर्चा हो रही है। टाइम तो निकल ही गया। स्थिर कर्म भूमिया, स्थिर कर्म भूमि की संख्या देखिए, विवेक क्षेत्र संबंधी 160, भूचर प्रदेश, विदेह क्षेत्र संबंधी 160 भूचर प्रदेश यानी विदेह क्षेत्र आर्यखंड, वे कितने हैं? 160 प्लस विदेह क्षेत्र संबंधी 160 खेचर प्रदेश यानी वहां के विजयार्ध पर्वत, ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 320। ये स्थिर कर्म भूमिया हैं तीन लोक में, ये स्थिर कर्म भूमिया विदेह क्षेत्र संबंधी 320 हैं, और नीचे भरत क्षेत्र संबंधी 5 भरत और खेचर प्रदेश ये स्थिर हैं, 5 भरत संबंधी खेचर प्रदेश स्थिर हैं, ऐरावत क्षेत्र संबंधी 5 खेचर प्रदेश ये स्थिर हैं, क्योंकि ये इनमें भोग भूमि आना जाना नहीं रहता इसलिए स्थिर हैं, और ये हो गए 10 कर्म भूमि। अंतिम द्वीप का आधा भाग एक अर्थात स्वयं प्रभ पर्वत के बाह्य भाग का आधा द्वीप स्वयंभू रमन द्वीप ये स्थिर है। देखो अंतिम द्वीप है ना, अंतिम द्वीप का आधा भाग यानी परभाग, उस तरफ का भाग, इस तरफ तो भोग भूमि है, उस तरफ कर्म भूमि है, तो वहां पर कर्म भूमि के जीव जन्म लेते हैं, केवल त्रिंश ही जन्म लेते हैं, मनुष्य आदि वहां भी नहीं है। वहां कर्म भूमि में सौधनी पंचेंद्री, असौधनी पंचेंद्री, विकलत्रय सभी पाए जाते, सभी पाए जाते हैं, समूर्छन भी पाए जाते हैं और गर्भज भी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। तो वो आधा स्वयंभू रमण द्वीप का परभाग का आधा हिस्सा गोलाकार का पूरा और समुद्र पूरा, स्वयंभू रमण समुद्र ये कर्म भूमि है। ये कितने हैं? दो, समुद्र और द्वीप, ये दो हो गए। ये दो और कहाँ हैं? आदि के दो समुद्र प्रदेश लवण और कालोदक। समुद्र प्रदेश भी तो कर्म भूमि है, लवण समुद्र और कालोदी समुद्र, ये दोनों कर्म भूमि हैं। ये दो मिलाएंगे कितने हो गए? 334 स्थिर कर्म भूमियां हैं। ये अस्थिर नहीं, स्थिर कर्म भूमि भी स्थिर है और भोग भूमि भी स्थिर है। कर्म भूमि अस्थिर भी है और भोग भूमि भी अस्थिर है। कैसे कैसे हैं यही बता रहे हैं। अस्थिर कर्म भूमि संख्या पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में खेचर यानी विद्याधर पर्वत की श्रेणी के 10 आर्य प्रदेशों को छोड़कर शेष भूचर मनुष्यों के 10 आर्य प्रदेश ही अवसर्पिणी के चौथे पांचवे व छठे काल में तथा उत्सर्पिणी के पहले दूसरे तीसरे काल में अस्थिर कर्म भोग भूमियां कहलाती हैं। अस्थिर कर्म भूमि है, ये क्लियर है। यानी तीन लोक में अस्थिर भोग भूमि कितने, अस्थिर कर्म भोग कर्म भूमि कितने, स्थिर भोग भूमि कितने और स्थिर कर्म भूमि कितने, ये इसमें समझाया है। एक बार और पढ़ करके देखो तो मजबूत हो जाएगा। टाइम हो गया है जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे। Thank you.